ಶರ ಪ್ರಾಣೀರ ಭವತಿ ಭಾರತ ಅಧ್ಯುತಾನಂ ಮಧರ್ಮ ತದಾನಂ ಶ್ರೀಶಾಮ್ಯಹಂ ಪರಿತ್ರಾಣಾಯ ಸಾಧುನಾ ವಿನಾಶಾಯ ಚ ಜೋಸ್ಕೃತಾ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾರ್ಥಾಯ ಶಂಭವಾಮಿ
स्वागत है आप सब का इस साप्ताहिक श्री कृष्णा भावनामृत कार्यक्रम में। सुप्रभात। आज हम आपके सेवा में प्रस्तुत करते हैं परम पूज्य राधा गोविंद दास गोस्वामी महाराज जी से, जो हमें आज विष्णु पंचक की कथा सुनाएंगे।
विष्णु पितामह सब मिलाकर 58 दिन बाण सज्जा पर थे, 58 डेज, इतने दीर्घ काल। तो जब युधिष्ठिर महाराज कुरुक्षेत्र चले, तदा ते भ्रातर सर्वे सदस्व ही स्वर्ण भूषित ही अनुगछन रथ विप्रा व्यास धौम्या दयस तथा। उस समय युधिष्ठिर महाराज के सभी भाई भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव सब चले, और इसके साथ व्यास देव और धौम्य ऋषि आदि भी चले, सब लोग चले। ये लोग जानते थे कि जब राजा युधिष्ठिर प्रश्न करेंगे भीष्म पितामह से तो बहुत बड़ा ज्ञान मिलेगा। भीष्म पितामह द्वादश महाभागवतों में से एक महाभागवत है, परम भक्त हैं, परम ज्ञानी हैं। इनका प्रवचन सुनने के लिए भगवान वेदव्यास देव आए, धौम्य ऋषि आए और भी एक लोग आए। मुख्य रूप से सुत गोस्वामी संबोधित कर रहे, हे विप्रा, हे सौनकादि ब्राह्मणों, महाराज युधिष्ठिर के सभी भाई चले। कैसे चले? सदस्व रथ, सब रथ पर चढ़ करके चले। राजा थे ही, सब लोग रथ पर चढ़े, जिन रथों में बहुत ही सुंदर सुशील घोड़े जुटे हुए थे। सदस्व रथ, अश्व, जिन रथों में बहुत सुंदर सुशील घोड़े जुटे थे, उन रथों पर चढ़ करके वे चले। और व्यास धौम्य दयस तथा और बड़े बड़े ज्ञानी ब्राह्मण भी चले भीष्म पितामह का प्रवचन सुनने के लिए, जिनमें व्यास और धौम्य मुख्य हैं। इसके बाद सुत गोस्वामी कहते हैं, भगवान अपि विप्रर से रथे न सधनंजय सतैर्व्य रोचत नृप कुबेर इव गुह्य कहे। युधिष्ठिर महाराज और उनके भाइयों के साथ भगवान अपि, श्री भगवान कृष्ण भी चले, कुरुक्षेत्र चले हस्तिनापुर से। रथेन स धनंजय, धनंजय के साथ रथ पर चढ़ कर चले। भीष्म पितामह को इस सारथी स्वरूप बहुत अच्छा लगता था, इसीलिए भगवान स्वयं ही रथ हाँकते हुए चले, सारथी के रूप में ही रथ चला करके चले हस्तिनापुर से, रथ हाँक करके आ रहे थे। कुछ भक्त ऐसा कहते हैं कि नहीं, अर्जुन के साथ बैठे थे, कोई दूसरा रथ चला रहा था, नहीं, श्री कृष्ण ही रथ चला रहे थे, धनंजय रथी के रूप में मूल आसन पर बैठे थे। इसी रूप में भीष्म पितामह को दर्शन भी देना चाहते थे। तो भगवान अपनी, भगवान भी चले युधिष्ठिर महाराज के साथ, हे विप्रर से, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ सौनक जी, हे संबोधन। बीच बीच में सुत गोस्वामी नैमिषारण्य के ऋषियों को संबोधित करते हैं, कभी बहुवचन में और कभी केवल सौनक जी के लिए। ऊपर विप्रह कहे हे ब्राह्मणों, और इसमें संबोधन हे विप्र से, हे विप्र ऋषि श्री सौनक जी, भगवान भी चले। इन सब के साथ, अपने भाइयों के साथ घिरे हुए महाराज युधिष्ठिर ऐसे सुंदर लग रहे थे जैसे कुबेर जी जक्षों के द्वारा घिरे हुए अच्छे लग। इसमें महाराज युधिष्ठिर के ऐश्वर्य और सुंदरता का वर्णन। कुबेर जी अलकापुरी में रहते हैं, धन के स्वामी हैं, वे चलते हैं जक्षों से जैसे घिरे हुए, वैसे अपने भाइयों से घिरे हुए युधिष्ठिर महाराज बहुत सुंदर लग रहे थे। व्यरोचत विशेषण और विशेष सुंदर लग रहे थे। जब कुरुक्षेत्र में वे सब आए, सुत गोस्वामी गए कह रहे हैं, क्योंकि वो नैमिषारण्य में बोल रहे हैं, नैमिषारण्य से कथा कह रहे हैं, हम तो यही कथा कह रहे हैं, इसीलिए हम आए कहेंगे। तो जब ये सब लोग कुरुक्षेत्र में आए, वहाँ गए जहाँ भीष्म पितामह गिरे हुए थे, दृष्टवा निपतितम भूमौ, जमीन पर, भूमि पर, बाण सज्जा पर गिरे हुए भीष्म पितामह को देखे। देख कर ऐसा लगा, भीष्म पितामह कैसे लग रहे थे, ऐसे लग रहे थे जैसे मालूम पड़ता था कि स्वर्ग से कोई देवता गिरा है। स्वर्ग च्युतम इव अमरम, कोई अमर स्वर्ग च्युत हो गया हो ऐसे लग रहे हैं। भीष्म पितामह 400 वर्ष के थे उस समय, और इनका शरीर देवता के समान था, लंबा गोरा और बहुत ही सुंदर। कभी कभी देवता गिरते हैं इस पृथ्वी पर, सशरीर ही गिरते हैं, तो ऐसा लग रहा था कि कोई देवता गिरा हुआ है, मनुष्य गिरा हुआ ऐसा नहीं कह रहे हैं सुत गोस्वामी। दिवस च्युतम अमरम इव, दिव हमने स्वर्ग, स्वर्ग से गिरे हुए किसी देवता की तरह लग रहे थे। उनको देख करके पांडवा प्रणेमु, प्रणेमु पांडवा भीष्म, भीष्म को प्रणाम किए, पांडव सभी आकर के प्रणाम किए। ध्यान रखना चाहिए कि भीष्म पितामह को सभी प्रणाम किए तो चरण के ओर से किए, सभी सब सर्वे यहाँ कहा गया प्रणेमु पांडवा भीष्मम, पांडव भीष्म को प्रणाम किए, सर्वे नहीं ब्राह्मण आदि नहीं किए होंगे, पांडव प्रणाम किए। सानुगा अपने अनुगामियों के साथ सह चक्रिणा और सुदर्शन चक्र लिए हुए भगवान श्री कृष्ण भी प्रणाम किए भीष्म पितामह, क्योंकि भगवान कृष्ण इस परिवार के संबंधी थे। पांडु महाराज फूफा थे भगवान के और कुंती बुआ, इस नाते से भीष्म पितामह तो और नाता में बहुत बड़े थे और आयु में भी बड़े थे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के समकक्ष थे तो भगवान भी प्रणाम किए। देखिए भगवान की मधुर लीला, भीष्म पितामह को चक्री भी प्रणाम की। चक्री का अर्थ है चक्र, जिनका है वह चक्री, चक्रीणा। श्री कृष्ण को कभी कभी चक्री कहते भी है, चक्र जिसके हाथ में हो वो है चक्री। युधिष्ठिर प्रणाम किए, भीमसेन प्रणाम किए, अर्जुन नकुल सहदेव और उनके अनुगत और लोग भी, और उसके साथ साथ श्री कृष्ण भी प्रणाम किए। तत्र ब्रह्मर्षय सर्वे देवर्षयश्च सप्तम राजर्षयश्च तत्रासन द्रष्टुम भरत पुंगवम। उस समय कुरुक्षेत्र में सर्वे ब्रह्मर्षय, समस्त ब्रह्म ऋषिगण, देवर्षयश्च और समस्त देवर्षिगण और समस्त राजर्षिगण भरत पुंगवम, भरत श्रेष्ठ भीष्म पितामह का दर्शन करने के लिए आए थे। आसन, आसन का अर्थ है कि भगवान के जाने के पहले सब आ गए थे, युधिष्ठिर महाराज के पहुंचने के पहले ही सब आ चुके थे ऋषि मुनि। तुरंत समाचार फैल जाता था कि युधिष्ठिर महाराज की तैयारी हो गई अब कुरुक्षेत्र जाने की, भगवान भी जाएंगे, तो सभी ऋषि मुनि आ गए। आजकल तो आदमी कहीं मोबाइल फोन कर देता है, उन लोगों के पास तो लाखों गुना बेहतर साधन था, तो जान जाते थे किसी के मन की भी बात, युधिष्ठिर महाराज के मन में क्या हो रहा है ऋषियों को पता चल जाता। तो जब सुने कि युधिष्ठिर महाराज भीष्म पितामह से कुछ आध्यात्मिक या व्यवहारिक धर्म की शिक्षा लेने जा रहे हैं, तो सारे देवर्षि, सारे राजर्षि और ब्रह्मर्षि तत्र आसन, वहाँ आ गए। ये सुत गोस्वामी जो बोल रहे हैं उन शब्दों पर ध्यान, सर्वे राज सबके साथ लगेगा, सर्वे ब्रह्मर्षय, सर्वे देवर्षय, सर्वे राजर्षय तत्र आसन, वहाँ जुटे थे भीष्म पितामह के मुख से प्रवचन सुनने के लिए जुटे हुए, दृष्ट उनका दर्शन करने के लिए। किस तरह से कोई व्यक्ति भगवान के धाम जाएगा, किस चेतना में और क्या बात बोल करके, इसको देखना चाहते थे। उनको विश्वास था जब उनके देह त्याग के समय भगवान साथ में रहेंगे तो भीष्म पितामह सीधे भगवान के धाम जाएंगे, वैकुंठ जाएंगे, इसको देखना चाहते थे। तो सारे ऋषि मुनि आदि राजर्षि गण भी सब आ गए। कौन कौन आए थे, इनका नाम, कुछ का नाम बता रहे हैं सुत गोस्वामी। पर्वतो नारदो धौम्यो भगवान बादरायण, बृहदस्व भरद्वाजो शशिष्यो रेणुका सुत, वशिष्ठ इंद्र प्रमद स्त्रितो गृत समदोषित, पक्षिवान गौतम त्रिश्च कौशिकोत्त सुदर्शन, अन्य च मुनय सुत परावर ब्रह्म राता दयो मलह, शिष्य रूपेता आजगमु कश्यपांगिरसादय। कौन कौन ऋषि मुनि सब जुटे हुए हैं, उनमें कुछ प्रधान के नाम गिना रहे हैं। पर्वत, पर्वत मुनि, ये पर्वत मुनि गंधर्वों में जन्म लिए हैं, जैसे श्री नारद जी गंधर्वों के साथ रहते हैं, तो श्री नारद जी के साथ ही प्रायः पर्वत मुनि रहते हैं। कई अवसर पर ऐसे महाभारत में और पुराणों में लिखा हुआ है कि श्री नारद जी पर्वत मुनि के साथ आए, राजसूय सभा में भी पर्वत मुनि थे। पर्वत नारद, और श्री नारद जी के बारे में तो सब जानते ही, श्री नारद जी सबसे बड़े प्रचारक वैष्णव शिरोमणि हैं। श्री प्रहलाद महाराज, श्री ध्रुव महाराज, युधिष्ठिर महाराज, अम्बरीश महाराज सब इनके शिष्य हैं श्री नारद जी के, और ये भगवान ब्रह्मा जी से डायरेक्ट जन्म लिए हैं, उनके गोद शब्द से शरीर से जैसे कर से क्रतु का जन्म हुआ है, संग से संगा नारदो जग्गे उनके गोद से श्री नारद जी से प्रकट हुए। अपनी परंपरा को श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी में ही दिया। ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय में ब्रह्मा जी के बाद श्री नारद जी आते और श्री नारद जी ने वेद व्यास देव को ज्ञान दिया, वेद व्यास देव ने मध्वाचार्य को दिया और मध्वाचार्य जी के बाद ये परंपरा जिसमें श्री माधवेंद्रपुरी, ईश्वरपुरी, चैतन्य महाप्रभु, रूप गोस्वामी, श्री प्रभुपाद ये सब परंपराएं हैं। श्री नारद जी ही वास्तविक वैष्णव आचार्य हैं जिन्होंने सारे विश्व में कृष्ण भावना का प्रचार किया, सारे ब्रह्मांडों में श्री नारद। ये श्री नारद जी आए और धाम में पांडवों के खास पुरोहित है और महाराज युधिष्ठिर का साथ इन्होंने वनवास में भी दिया था। वन में जब गए थे युधिष्ठिर महाराज उस समय भी गुरु साथ साथ रहते थे, कई अवसर पर इनका बहुत बड़ा उपहार किए धाम में। भगवान बादरायण, भगवान वेदव्यास देव बादरायण, इनके बारे में सब वैष्णवों को पता है कि भगवान वेदव्यास देव पराशर मुनि के पुत्र हैं और सत्यवती से इनका जन्म हुआ। जितना भी इतिहास पुराण है इसकी रचना भगवान वेदव्यास देव किए हैं, भगवान के वांग्मय अवतार माने जाते। पांडवों के परिवार से इनका बहुत घनिष्ठ संबंध है, यहाँ तक कि अपनी भाभियों से इन्होंने पुत्र उत्पन्न किया माँ की आज्ञा से। धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर सब इनके ही पुत्र हैं। बिल्कुल धर्म के अनुसार भगवान वेदव्यास देव महाराज युधिष्ठिर महाराज ने भीष्म पितामह का प्रवचन सुनने के लिए आए। बृहदश्व भी एक महान ऋषि थे, भरद्वाज और भरद्वाज आश्रम आज भी है प्रयागराज में, इलाहाबाद में। कई अवसरों पर महाराज युधिष्ठिर के साथ रहे हैं और बहुत काल से भगवान श्री राम की लीला में भी थे। जब भगवान श्री राम प्रयागराज पहुंचे थे अयोध्या से चलकर चित्रकूट जाने के लिए, तो वहां पर भगवान का इन्होंने स्वागत किया था भरद्वाज। इनके वीर जस खलन से ही द्रोणाचार्य का जन्म हुआ था। शिष्य रेणुका सुत, शिष्यों के साथ भगवान परशुराम भी गए। देखिए परशुराम जी के साथ भीष्म पितामह का युद्ध हुआ था, लेकिन आज जब भीष्म पितामह के मुख से सुनना है तो भगवान परशुराम वो सब चीज भुला करके ज्ञान लेने के लिए गए। तो साक्षात भगवान है लेकिन दुनिया को शिक्षा देने के लिए ये लीला कर रहे हैं। भगवान परशुराम भी गए और जितने भी एक वचन में ऋषि आए हैं सबके लिए शिष्य सहित ये यहाँ लगाना पड़ेगा। जो भी ऋषि आए वे अपने शिष्यों के साथ आए, क्यों? क्योंकि यह बहुत आवश्यक है एक महान भक्त ज्ञानी के मुख से भगवान की बातें सुनी जाए, भगवान के बारे में अनुभव बताएंगे भीष्म पितामह, इसको सुनने के लिए सब ऋषि मुनि आए और अपने शिष्यों के साथ आए। ये नहीं कह दे शिष्य को तुम यहीं रहो देखो और हम जरा सुनते हैं कथा, नहीं सब चले। गुरु का कर्तव्य है कि शिष्यों को लेकर के जाए ऐसे अवसर पर। शिष्यों का सबसे बड़ा हित यही है उनको भगवान की कथा सुनने का अवसर दिया जाए। जितने भी ऋषि मुनि आए सब अपने अपने शिष्यों को लेकर के गए। दो बार इस शब्द का प्रयोग हुआ है। रेणुका सुत, रेणुका के पुत्र जमदग्नि से भगवान परशुराम का जन्म हुआ था। रेणुका से एक बार हस्तिनापुर में युद्ध भी हुआ था दोनों से, एक तो भगवान के अवतार और एक भगवान के परम भक्त भीष्म पितामह। ऐसा हुआ कि श्री परशुराम जी ने अम्बा के वचन से प्रभावित होकर के कह दिया भीष्म को तुम इसे शादी करो, इसे विवाह करो, क्योंकि इसका हाथ पकड़े तुम काशी में। तो उन्होंने नकार दिया। भीष्म पितामह ने कहा नहीं मैं विवाह नहीं कर सकता, मैं तो व्रत लिया हूँ, प्रतिज्ञा किया। भगवान परशुराम कहते हैं प्रतिज्ञा करने से क्या होगा, मैं तुम्हारा गुरु हूँ, तुमको धनुर्वेद की शिक्षा दिया हूँ, तुम मेरी बात मानो और विवाह करो। भीष्म पितामह ने नकार दिया नहीं। तो भगवान परशुराम कहे तब युद्ध करना पड़ेगा। दोनों में घमासान युद्ध हुआ और निर्विशेष कोई हार जीत नहीं रहा था। अंत में श्री नारद जी ने आकर के युद्ध रोक दिया, क्या आपको फालतू लड़ रहे हैं, थोड़ी उनकी बात मान करके भगवान परशुराम जी और भीष्म पितामह लड़ना बंद। लेकिन आज जब जीवन के अंतिम समय में अपने अनुभव कुंज को खोल करके रखना है, भगवान परशुराम जानते हैं कि कृष्ण के परम भक्त हैं, कृष्ण के बारे में बोलेंगे, पहले का कोई भी बैर विरोध भाव या दुर्व्यवहार भूल करके आए उनकी कथा सुनने। भगवान के अवतार परशुराम जी और एक मनुष्य के मुख से कथा सुनने के लिए आए हैं। भगवान की बात इतना महत्व है इसको, और इनके लिए स्पेशल सुख गोस्वामी कहते सशिष्यो रेणुका सुता। ऐसे सबके साथ सशिष्य लगेगा, लेकिन इनके लिए तो इमीडिएट रेणुका पुत्र परशुराम शिष्यों के साथ। वशिष्ठ वशिष्ठ मुनि बहुत दीर्घ जीवी है, भगवान श्री राम की लीला में भी रहे हैं और भगवान कृष्ण की लीला में भी। महाराज युधिष्ठिर के यज्ञ में ये रहे थे, राष्ट्रीय यज्ञ में। और अर्जुन का जब जन्मोत्सव मनाया जा रहा था वन में, तो वशिष्ठ मुनि थे वहाँ। भगवान परशुराम से भी पहले रघुवंश के पुरोहित है, सूर्य वंश के, बहुत काल से ये भी आए भीष्म पितामह का संग करने के लिए। इंद्र प्रमद ये भी एक श्रेष्ठ ऋषि है। त्रित ये गौतम ऋषि के पुत्र है। गौतम मुनि के तीन पुत्र हुए, एक का नाम था एक, दूसरे का द्वित और एक का पीत। तीन पुत्र हुए, तो उसमें पीत भी बहुत महान ऋषि हुए थे, ये भी आए। और ग्रित समद असित, इनका नाम भगवत गीता में आया हुआ है ऋषि, असितो देवलो व्यास, असित भी आए। पक्षीवान गौतम मुनि अहिल्या के पति, भी बहुत प्रसिद्ध है। पिश्च रात्रि साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र है, जिनकी पत्नी अनुसुईया माता जी है, भगवान इनके पुत्र बने। ऐसे महान है अति मुनि भी आए। कौशिक नाम के राजा है, या ब्रह्मर्षि सुदर्शन नाम के ऋषि। अन्य च मुनयो ब्रह्मन् ब्रह्मराता दयमला, हे ब्रह्मन् हे चौनक जी, अन्य भी बहुत से आए अन्य मुनि। ब्रह्मराता दय सुखदेव आदि, सुखदेव गोस्वामी भी भीष्म पितामह के मुख से वचन सुनने के लिए गए। बाद में ये महाराज परीक्षित को भागवत सुनाएंगे। ब्रह्मरात, सुखदेव गोस्वामी को ब्रह्मरात कहते हैं, भगवान ने इनकी रक्षा किया था। वे गर्भ से प्रकट नहीं हो रहे थे, तो भगवान ने कहा कि मैं आपकी रक्षा करूंगा, आप माया के प्रभाव में नहीं आ पाएंगे, आप बाहर आइए माँ के गर्भ से। उस समय सुखदेव गोस्वामी का नाम पड़ा ब्रह्मरात। ब्रह्म मतलब भगवान श्री कृष्ण, और रात माने दान देना, दिया गया पिताजी को रक्षा किए। सुखदेव गोस्वामी भी आए। शिष्य रूपेता आज कश्यपांगी रसादय, सभी ऋषि मुनि जैसे कश्यप जी और बृहस्पति जी, कश्यप जी तो देवताओं के दैत्यों के सबके पिता ही हैं। कश्यप जी का विवाह दक्ष प्रजापति की 13 पुत्रियों से हुआ था, जिसमें माता दीति अदिति कई हैं, सुरसा इला काष्ठा दनु अनेक स्त्री है। कश्यप जी आए स्वर्ग से वचन सुनने के लिए भीष्म पितामह से, और बृहस्पति जी जो देवताओं के गुरु हैं, इंद्र आदि देवताओं के वही गुरु हैं स्वर्ग से, वे वहाँ से आए भीष्म पितामह का प्रवचन सुनने के लिए इस धरती पर कुरुक्षेत्र में। इसे समझा जा सकता है कि भगवान के बारे में जो कथाएं होती हैं उनका कितना महत्व है। सभी कोटि के परम वैष्णव हैं, भागवत पुरुष हैं, अपना घर है, अपना काम धंधा और छोड़ छाड़ करके और कथा सुनने के लिए आए हुए स्वर्ग से। इसमें से प्रायः जितने लोग हैं प्रायः सब स्वर्ग से, कोई इस पृथ्वी से, ये सब आए। इनके लिए शुद्ध गोस्वामी अमला शब्द का प्रयोग, अमला निर्मल शुद्ध चरित्र, भगवान के परम भक्त ऋषि लोग सब आए। जब ये जुटे तो भीष्म पितामह ने इनका कैसे स्वागत किया इसका वर्णन कर रहे हैं। समेतान महाभागान लभ्य वसुतमः पूजयामास धर्मज्ञो देश काल विभागवित। इसमें पितामह इस बात को पूरा पूरा जानते थे कि किस देश में स्थान में और किस समय किस परिस्थिति में इसका कैसे स्वागत किया जाता। धर्मज्ञ अपने पास आए हुए सभी ऋषि मुनियों का उन्होंने स्वागत किया। प्रश्न हो सकता है नरी कहाँ स्वागत करेंगे, बाण सज्जा पर पड़े हैं, न चल सकते हैं न खड़ा हो सकते हैं, तो स्वागत क्या करेंगे इन हजारों हजार ऋषियों का। शुद्ध गोस्वामी कहते हैं देश काल विभाग भी धर्मज्ञ थे, इस देश में किस काल में किस व्यक्ति का क्या कर्तव्य होता है इसको जानते थे। उस समय ऋषि मुनियों को आँख से देखना और मुख से नमः शब्द कह देना इतना ही काफी, देश काल के अनुसार यही स्वागत। मान लीजिए गुरु वशिष्ठ जी आए हैं तो उनको श्री वशिष्ठाय नमः से कहना, भीष्म पितामह का यही स्वागत। वो समय नहीं था कि उठ करके और पेट में लावे खाने के लिए और पानी लावे उनको आसन दे बैठावे, देश काल विभाग उस देश में उस युद्ध भूमि में और उस स्थिति में उस काल में नहीं कर सकते, स्वयं ही उनके शरीर में बाण धसे हुए थे, उठने की शक्ति नहीं थी, दर्द से व्याकुल थे, ऐसे वे सबको उठ उठ करके स्वागत करते। परंतु जब समय उचित नहीं है और स्थान भी नहीं, अपना घर नहीं है कि वहाँ फ्रिज खोल कर कुछ निकाल दे दिए। युद्ध का मैदान है, वहाँ कुछ है नहीं, एक पैसा भी न तो उठने की शक्ति है, फिर भी स्वागत किया जा सकता है। देश काल के अनुसार आने वाले ऋषियों को, राजर्षियों को वे आँख से देखते थे, वचन बोलते थे, प्रणाम, आप कैसे हैं, बैठिए, बहुत अच्छा हुआ आप आए, आपका दर्शन है, इतना ही कहने से ऋषि संतुष्ट हो जाते। ये अपेक्षा नहीं कर सकते थे कि और स्वागत करें, राजा हैं, राजकुल के पूर्वज हैं, भले जिन ऋषियों का उन्होंने स्वागत किया था साष्टांग प्रणाम करके, उनको अनेक प्रकार से खिला करके, आसन देकर, आज ऐसा देश है और ऐसा समय है केवल देखकर नमस्कार कर लेना, वाणी द्वारा फिर से भी नमस्कार नहीं कर सकते, केवल बोल सकते थे नमः ते नमस्ते, इतना ही बोल सकते। इस तरह से भीष्म पितामह सबका स्वागत किया, पूजया मास, सबका पूजन की, यही पूजन था, उनको देख करके हंस देना, पूछना, यही उनका स्वागत पूजन। सभी ऋषियों का उन्होंने स्वागत किया, भक्तों का, भगवान का हृदिष्ट। कृष्णम च तत्प्रभावज्ञ आसीनम जगदीश्वरम दिष्ठम पूजया मास मायोपात विग्रहम। समस्त ऋषियों का उन्होंने स्वागत किया, देश काल के अनुसार एक श्लोक में कह रहे हैं। भगवान कृष्ण का उन्होंने कैसे स्वागत किया इसको एक श्लोक में कह रहे हैं। कृष्णम च पूजया मास के लगा लेना चाहिए। कृष्ण पितामह ने भगवान कृष्ण का स्वागत किया, कृष्ण की पूजा किया, ऐसे किया तो भीष्म पितामह का गुण वर्णन कर रहे हैं। प्रभावज्ञ, प्रभावज्ञ, श्री कृष्ण के प्रभाव को भीष्म पितामह जानते, श्री कृष्ण तत्व के पूर्ण ज्ञाता है भीष्म पितामह। यद्यपि श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह को प्रणाम किया तो भीष्म पितामह जानते हैं कि ये साक्षात स्वयं भगवान परब्रह्म है, परमात्मा है, ईश्वर है, उन्होंने उनका स्वागत किया। इसमें पितामह जानते थे जगदीश्वरम, समस्त जगत के देवताओं के, मनुष्यों के, असुरों के, समस्त चराचर जीवों के ये ईश्वर हैं, समस्त लोगों के ईश्वर हैं, कृपा करके मेरे पास अपना श्री विग्रह प्रकट किए हैं, आए हैं। हृदिष्ठम, इसमें पितामह ये भी जानते थे कि सभी जीवों के हृदय में निवास करते हैं, हृदिष्ठम, परमात्मा रूप से भगवान श्री कृष्ण सबके हृदय में रहते हैं, और भीष्म पितामह के हृदय में अर्थ सारथी के रूप में विद्यमान रहते हैं। परमात्मा रूप से ही नहीं, भीष्म पितामह की भक्ति से आकृष्ट होकर के भगवान उनके हृदय में वास करते, इसी रूप का चिंतन कर रहे थे। हृदिष्ठम, श्री कृष्ण हृदय में भी हैं और बाहर भी हैं। बाहर महाराज युधिष्ठिर के साथ छोटी उम्र का व्यक्ति और वहाँ बैठे हुए हैं उनके चरणों में, भीष्म पितामह के पास भगवान, लेकिन भीष्म पितामह हृदय में उनकी पूजा करने लगे, जैसे पहले करते थे भगवान कृष्ण की पूजा, ऐसे हृदय में अनेक प्रकार से उनकी पूजा करने लगे। हृदय में है ही तो मन द्वारा उनकी पूजा करनी है, तो आरती करना या भोग देना, कुछ अर्पण करना, सब कुछ करने लगे। कृष्णम च पूजया मास हृदिष्ठम, हृदय में पूजा कर रहे, और बाहर से भी नमस्कार किए ही, भगवान उनको नमस्कार किए, भीष्म पितामह उनको नमस्कार किए। माया उपात विग्रह, जो माया से अपने त्रिविग्रह को भीष्म पितामह के सामने लाए हैं, यहाँ माया का अर्थ है कृपा, माया दम्भे कृपायाम च, संस्कृत के शब्दकोश में अर्थ किया गया है, माया शब्द का प्रयोग दम्भ कृपा में भी होता है, दम्भ का अर्थ दिखावा, इसको भी माया कहते हैं, कृपा को भी माया कहते हैं। यहाँ जो माया के द्वारा भगवान लाए अपने शरीर को, यह अर्थ है कृपा, उनके हृदय में जो कृपा है भक्त के प्रति, अपने स्नेही श्री भीष्म पितामह के प्रति, उनके जीवन के अंतिम काल में भगवान अपने को लाए है वहाँ, इतना सुंदर श्री विग्रह लाए। माया उपात उप आत, उपकार से निकट, आत माने लाना और माया माने कृपा, कृपा से दर्शन दिए हैं, आए हैं, बहाना बना करके कि युधिष्ठिर का अज्ञान दूर करना है। युधिष्ठिर का अज्ञान और ज्ञान दूर कभी भी हो जाता है, भगवान कर सकते थे, लेकिन वास्तव में भी भीष्म पितामह पर कृपा करके युधिष्ठिर का बहाना करके आना चाहते थे, तो आए, ये आए हुए हैं, बिल्कुल नम्र भाव से बैठे हुए हैं। बाद में भीष्म पितामह ने ध्यान दिया, श्री कृष्ण को तो देखे, ऋषियों को देखे, स्वागत किए, उसके बाद स्पेशल दृष्टि डाले पांडवों पर, खास इनके ही परिवार के थे, पांडु पुत्रान उपासीनान, पांडु पुत्रों को उन्होंने देखा उपासीनान, जो बिल्कुल निकट बैठे थे, इसमें पितामह के बिल्कुल चरण के पास युधिष्ठिर महाराज बैठे थे, बिल्कुल चरण के पास, और सिर नीचे था, भीमसेन भी सिर नीचे किए थे। अर्जुन युधिष्ठिर महाराज बहुत शोक में थे, अपने बंधु बांधवों की हत्या हुई है इस युद्ध में, इसके लिए उस शोक में थे और इसलिए भी शोक में थे कि हमारे पितामह इस दशा में पड़े हुए हैं, युद्ध भूमि में बाण सज्जा पर ये दशा है। इसलिए उनके मन में बहुत दुख हो रहा था, गुरु का वध करा दिया गया, ये कराया गया, फिर इनको धराशायी किया गया। इसमें पितामह ने देखा कि ये पांडु के पुत्र, पांडु इनके भतीजा थे, पांडु पुत्रन उपासीनन, पांडु पुत्रों को उन्होंने देखा कि बिल्कुल हमारे निकट बैठे हैं और श्रेय प्रेम संगता, श्रेय का से विनय, बिल्कुल नम्र हैं और स्नेह है इनके हृदय में मेरे, श्रेय से और प्रेम से युक्त पांडु के पुत्रों को उन्होंने देखा, उनको देखते ही भीष्म पितामह के आंखों में आंसू भर आया पूरा, उस समय कुछ भी देख नहीं पाए, आंख में आंसू भर जाता है, ये आंसू को पोछा जाए हाथ से तब न देखने की शक्ति आएगी, पांच सज्जा पर ऐसे हैं और आंखों में आंसू भर गया है तो हाथ से पोछ भी नहीं सकते। चष्टानुराग आश्रय अंधी भूते न चक्षुषा, स्नेह के आंसुओं से आंखें भर आई हैं, तो अंधी भूते न चक्षुषा, देख नहीं रहे थे, स्नेह में रोने लगे, पांडवों के दुख को उनके प्रेम को देख करके वे रोने लगे और इस तरह से शिशक शिशक कर कहने लगे, उदन बाड़ी से बेचस्त। खुद गोस्वामी कहते हैं कि भीष्म पितामह बोल रहे हैं तो आंखों में आंसू भरा हुआ है, उसमें देख नहीं रहे हैं केवल बोल रहे हैं, अहो कष्टम अहो अन्यायम जज्जुयम धर्म नंदनः जीवितुम नार्हत क्लिष्टम विप्रधर्माच्युताश्रयः, सबको संबोधन करके कह रहे हैं धर्म नंदना, ये धर्म पुत्र तो युधिष्ठिर महाराज के लिए बहुवचन का प्रयोग कर रहे हैं आदर से, अथवा सभी को कह रहे हैं, सभी पांडवों को धर्म पुत्र, उन्हें बहुत कष्ट हुआ, बहुत दुख हुआ है, युद्ध के पहले भी दुख हुआ, वनवास आदि का कष्ट तो लोग भोगे, अच्छा भवन की आग और क्या क्या, राज्य गया, धन गया, पति पर रखी गई द्रौपदी उसका अपमान हुआ, युद्ध के पहले भी और युद्ध के बाद भी तुम लोग दुख में ही रह गए। अभी व्यक्ति थे, जानते थे युधिष्ठिर के चेहरे को देखकर कितना दुख में है बेचारा, तो जीना नहीं चाहते थे। भीष्म पितामह कह रहे हैं कि बहुत दुख हुआ, लोगों के जीवन में बहुत दुख हुआ, कष्ट हुआ, तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, बहुत बड़ा अन्याय, हो कष्टम हो अन्यायम, कभी भी दुख से जीने लायक नहीं हो, अरे जीवन में सुख होना चाहिए, लेकिन बहुत दुख हुआ, मतलब पांडवों पर इतनी विपत्ति आई कोई सीमा नहीं थी, भीष्म पितामह सब देखे थे, जानते थे, राजा द्वारा ही इनको दुख दिया जा रहा था, दुर्योधन आदि के द्वारा, धर्माच्युता से लोग ब्राह्मणों के धर्म के साक्षात स्वयं भगवान के आश्रय में रहते हो, फिर भी तुम लोगों को इतना कष्ट हुआ, कष्ट से जीने लायक नहीं हो, इसमें वे आश्वासन दे रहे हैं कि धृष्टि तो प्रसन्नता से तुमको जीना चाहिए, दुख से नहीं जीना चाहिए, ये बेटा धर्म के ब्राह्मणों के स्वयं श्री कृष्ण के आश्रय में हो, जो व्यक्ति धर्म के नियमों का पालन करे, जिस पर ब्राह्मणों की कृपा हो गुरुजनों की, इसके साथ ही साथ जिसे श्री कृष्ण का आश्रय प्राप्त हो उसके लिए दुख कहाँ है, लेकिन इस तरह से धर्म ब्राह्मण भगवान सबके आश्रय में रहते हुए भी तुम लोगों को इतना कष्ट हुआ, बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, बहुत युधिष्ठिर चिंता मत करो।
सत्कुण्डलम्